ओम शांति। परसों से सुन रहे हैं तो थके तो नहीं है ना? अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशमेंट हो रहा है। तो अभी के सत्र में हम देखते हैं राजयोग करने से प्राप्तियां क्या क्या होगी, क्योंकि अक्सर लोग मेडिटेशन या योग करना चाहते हैं मन की शांति प्राप्त करने के लिए, या फिर हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, या मन को संतुलित रखने के लिए। तो आप सभी यहां मेडिटेशन सीखने आए हैं, राजयोग सीखने आए हैं, तो क्यों, क्या चाहते हैं, क्या प्राप्तियां चाहते हैं मेडिटेशन करके? तनाव से मुक्त होना चाहते हैं और परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव करना चाहते हैं और मन की शांति प्राप्त करना चाहते हैं। ये सब कुछ, चाहे वो परमात्मा के साथ साथ का अनुभव हो, मन की शांति है, या तनाव मुक्त जीवन कैसे हम जिए इसके बारे में जानकारी, ये सब कुछ हम क्यों चाहते हैं? हमारे अंतिम लक्ष्य क्या है जिंदगी का? जीवन और मृत्यु से, हाँ सबसे पहली बात है। चलो जीवन के बाद क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, वो हमें पता नहीं है, लेकिन जीते जी तो सुखी रहे। जीते जी तो सुखी रहे, तो हर व्यक्ति इस संसार में सुख और शांति चाहता है ना? और सुख और शांति कैसे प्राप्त होगी? पैसा कमाने से, दूसरों के टांग खींचने से, दूसरों को गिराने से, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा ये सब रखने से सुख शांति कैसे प्राप्त होगी? अपने अंदर कुछ शक्तियों की जरूरत होती है। शक्तियों के बिना हम जीवन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर अपने अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है तो सुख शांति होगी? सामना करने की शक्ति नहीं है तो सुख शांति रहेगी जिंदगी में? निर्णय करने की शक्ति नहीं है, मैं छोटा सा निर्णय भी नहीं ले सकती हूँ, डिसीजन ले ही नहीं सकती हूँ, तो मैं हमारे जीवन में सुख और शांति होगी? नहीं। ये जो भी सुख और शांति है वो शक्तियों का बाय प्रोडक्ट है। जब हम अपने जीवन में कुछ शक्तियों की अनुभूति करते हैं, केवल अनुभूति तक सीमित नहीं लेकिन कर्मों में उसको लेके आते हैं, तब हम सुख और शांति अनुभव कर सकते हैं। और फिर वो शक्तियां कौन कौन सी हैं? जब भी हम देवियों की पूजा करते हैं, नवरात्रि के समय खास करके देवियों की पूजा करते हैं, तो उनको कितने भुजाएं होती हैं? 8 भुजाएं, और हर एक भुजा में एक एक शस्त्र है। और 8 भुजा कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में या 8 या 10 या 4 भुजा वाले कोई है? नहीं। देवी देवताओं को क्यों इतने भुजाएं दिखाते हैं? क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और एक एक भुजा में एक एक शस्त्र है, शस्त्र भी किसका प्रतीक है? शक्ति का प्रतीक है। और उन शस्त्रों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? असुर संहार के लिए। कोई असुर ऐसे हैं इस संसार में जो बड़े बड़े दांत वाले, बड़े बड़े शरीर वाले, ऐसे विकराल रूप वाले कोई है ऐसे असुर? नहीं। कौन है वो असुर फिर? हमारे अंदर ही जो छिपे हुए विकार है, नकारात्मकता है, अपनी कमजोरियां है, वही हमारे अंदर के असुर है, है ना, तो उनको संहार करने की जरूरत है। और देवियों को क्या कहा जाता है, देवियां शिव की शक्तियां, चाहे वो माँ काली है, दुर्गा है, या जगदम्बे है, जो भी देवियों की पूजा करते हैं वो सभी शिव शक्तियां कहा जाता है, शिव की पुत्रियां। हम सभी कौन है, हम सभी कौन है, शिव के संतान है, चाहे वो स्त्री के शरीर में है या पुरुष के शरीर में है, हम सभी आत्माएं कौन है, हम सभी आत्माएं कौन है, उस शिव के संतान है, परमात्मा के संतान है। परमात्मा के संतान होने के कारण से हमें वो सब शक्तियां मांगने से मिली है या वर्षे के रूप में मिला हुआ है, मांग करके हमने नहीं लिया है लेकिन वर्षे के रूप में ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया है, हम सभी को मिल गया है। क्यों, क्योंकि हम सभी के पिता परमात्मा है, है ना। लेकिन उसके बारे में जानकारी ना होने के कारण से हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। जब हम यूज नहीं करते हैं वो बढ़ते नहीं है। खजाना जितना हम यूज करेंगे, जितना हम उपयोग में लगाते हैं उतना बढ़ता जाएगा। जैसे मसल को जितना हम यूज करते जाएंगे, शारीरिक शक्ति को जितना हम यूज करते जाएंगे, मसल पावर बढ़ता है, ऐसे ही इन शक्तियों को भी जितना हम कार्यान्वित करते हैं, कार्य में लगाते हैं, उतना वो बढ़ता जाता है। तो वो कार्य में लगाने के लिए क्या चाहिए, जानकारी। वो अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं? इस चित्र में संपूर्ण ज्ञान है। तो सबसे पहली शक्ति, एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहली शक्ति है पावर टू विड्रॉ, या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इस चित्र में क्या देख रहे हैं, कछुआ। कछुए की विशेषता क्या है, हाँ, जब चाहे वो अपने कर्मेंद्रियों को अंदर ले सकता है, जब चाहे वो बाहर कर सकता है। जब भी उसको डर लगता है ना, वो अंदर ले लेता है, क्योंकि उसके ऊपर का जो शेल है वो बहुत हार्ड है और उसका शरीर जो बहुत सॉफ्ट है, जब भी डर लगता है कि अंदर ले लेता है, क्योंकि वहां वो सुरक्षित महसूस करता है। उसके ऊपर कोई भी कूदे, पत्थर फेंके, कुछ भी फेंके, उसको कुछ नहीं होगा, सुरक्षित है। ऐसे ही हम सभी के जीवन में ऐसे सुरक्षित जगह कौन सी है, सुरक्षित जगह कौन सी है, जब भी हमें डर लगता है वहां जाकर के बैठ जाएं, परमात्मा के गोदी में। परमात्मा के गोदी में जाने से पहले कुछ और करने की जरूरत होती है, आत्मा में झांकने की शक्ति। इसीलिए कहा जाता है ना, परमात्मा को याद करने के लिए सबसे पहला कदम है अपने को आत्मा निश्चय करना, अपने को आत्मा समझ करके फिर परमात्मा को याद करना। तो वो है सबसे सुरक्षित जगह, आत्मिक स्थिति। क्यों, क्यों वो सुरक्षित जगह है, क्योंकि मेजॉरिटी जो 95% समस्याएं हैं, चाहे अपने जिंदगी में या फिर समाज में, चाहे वो विश्व में, कोई भी समस्या का जड़ क्या है, समस्या का जड़ क्या है, देह अभिमान। देह भान में आने के कारण से तेरा मेरा सब कुछ शुरू हो जाता है, जिस कारण से इतने सारे समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझ करके कार्य करते हैं, बहुत सारे समस्याओं से हम दूर हो जाते हैं। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम चल रहा था, तो एक मेहमान को स्टेज पे बुलाया गया था कि उनको भाषण करने के लिए। तो ऐसे मैं भाषण कर रही थी पहले, फिर उसके बाद उनका भाषण था। तो मैं भाषण करते समय यही आत्मा अभिमान स्थिति के बारे में बता रही थी। तो फिर उन्होंने कहा अपने भाषण में कि मैं जब यहाँ स्टेज पे आया बहुत डर लग रहा था मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब बहन जी ने कहा कि हम सभी आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूं, जैसे ही मैं उस स्थिति में स्थित हो गया, मुझे समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, मेरा डर निकल गया, डर निकल गया। यह अभ्यास करके देखिए, जब भी हमको डर लगता है, जब भी थोड़ा अनिश्चितता अनुभव होता है, तब हम यह आत्मा अपने आप को जब समझते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन से, बहुत सारे प्रकार के डर से हम ऊपर उठ सकते हैं। जैसे तूफान में, ये जो सागर में जो तूफान होता है ना, तूफान ऐसे स्पाइरल में वो घूमते 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 आगे बढ़ता है। अगर उस तूफान में कोई जहाज, शिप उसके चपेट में आ गया तो वो डूब जाएगा, लेकिन वो उससे बचने के लिए कैप्टन क्या करता है, उससे बचने के लिए क्या करता है कैप्टन, उससे बाहर जाने की कोशिश करेगा ना, तो और ही उसके चपेट में ज्यादा आएगा। तो उसके बीच की जगह जो है ना, बीचों बीच जो है, वहां ले जाने की जरूरत होती है। अगर वो जाते हुए कोई पैसेंजर्स देख लिया तो उनको और डर लगेगा, ये कैप्टन पता नहीं क्या कर रहा है, बाहर जाने के बजाय अंदर क्यों जा रहा है, अंदर जाएंगे तो और ही फंस जाएंगे, ये है वो है। नहीं, अंदर की जगह जो है ना, एकदम शांत है, एकदम शांत है, उसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, आंख, तूफान की आंख है वो, जो एकदम शांत है। चारों तरफ तूफान है, शिप वहां चला गया, जो वहां ले जाना मुश्किल है, लेकिन एक बार वहां ले गया है ना शिप को, सुरक्षित है। ऐसे ही हमारे चारों तरफ कहां क्या है, हमारे जीवन में चारों तरफ क्या है, तूफान, समस्याएं, परेशानियां, बहुत सारी बातें चारों तरफ चल रहा है, उसके चपेट में हम आ गए, हम डूब जाएंगे, हमारी शक्तियां डूब जाएगी, हमारी एनर्जी, सब कुछ निकल जाएगा। तो उसके बजाय क्या करना है, उसके चपेट में अगर नहीं आना है तो क्या करना होगा, क्या बीच की जगह, बीच की जगह क्या है वो, आत्मिक स्थिति। बार बार अपने को आत्मा समझ करके फिर कार्य में आना, ये बहुत जरूरी है। तब जाकर के हमारे कर्मों में कुशलता आती है। वैसे तो विपरीत है, पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करना, विड्रॉ हर चीज से न्यारा होकर के फिर जीवन जीना। लोग समझते हैं, सोचते होंगे कि शायद जंगलों में जाकर के रहना होगा, नहीं, इन शक्तियों, इस पर्टिकुलरली इस शक्ति को जब हम धारण करते हैं, हम अपने जो रिलेशनशिप से हमारे संबंध है, हमारे रोल है, उसको अच्छी रीति हम निभा पाते हैं, अच्छी रीति निभा पाते हैं। नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो अगर कोई एक डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत सारे सर्जरीज उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अचानक एक दिन उन्हीं के नर्सिंग होम में, उन्हीं के हॉस्पिटल में उसके बेटे को स्ट्रेचर पर लेके आते हैं। वो 20 साल का बेटा बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो अचानक एक्सीडेंट होने के कारण से वो हॉस्पिटल उनका नजदीक था पिताजी के, तो उसी हॉस्पिटल में लेके आए। ये जो सर्जन है, अभी तक इतने सारे अच्छे सर्जरीज किए हुए हैं, लेकिन ये जो पेशेंट आया, उनके ऊपर सर्जरी कर पाएंगे, कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, दो चार स्टिचेस ही लगाना है तो भी क्यों नहीं कर पाते हैं, अटैचमेंट। पहले जो पेशेंट्स आते थे, उनके डॉन के साथ डॉक्टर और पेशेंट का संबंध था, लेकिन अभी जो पेशेंट आया, उसके साथ ऑलरेडी एक गहरा संबंध है पिता और पुत्र का, जिस कारण से अपने आप को पिता के रोल से शिफ्ट करके डॉक्टर के रोल में अपने आप को ले जा नहीं पाए, है ना। तो क्यों नहीं ले जा पाए, क्योंकि वो अटैचमेंट। तो तो अभी हमें अपने कर्म क्षेत्र में क्या करना है, अगर कोई टीचर है, महिला है, दिन भर अलग अलग वो रोल निभाती है, एक टीचर भी है तो बहू भी है, एक डॉटर भी है, एक पुत्री भी है, एक वाइफ भी है, तो बहुत सारे जो रोल है वो निभाती है। लेकिन एक के साथ अगर मेरा उसका अटैचमेंट है तो क्या होगा, एक के साथ उसका अटैचमेंट है तो क्या होगा, उसी के प्रति ज्यादा सोच बुद्धि बार बार वहां ही जाता है, जिस कारण से दूसरे जो संबंध है वो ठीक तरह नहीं निभा पाते हैं, ठीक तरह नहीं निभा पाते हैं, है ना। तो इसीलिए कर्मों में कुशलता लाना है तो क्या करना होगा, क्या सोचना होगा कि मैं महिला हूं या फिर मैं टीचर हूं, मैं माँ हूं, ऐसा सोचने से कर्मों में कुशलता आएगी, हाँ? तो फिर है तो सही ना, वो सब है तो सही वो सब, हाँ? हाँ, मैं आत्मा हूं, टीचर का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, माँ का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, पुत्री का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, बहू का रोल निभा रही हूं। बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फिर रोल में आते हैं या पार्ट बजाते हैं तो वहां एक्यूरेट। अगर वो डॉक्टर को ये अभ्यास होता, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास होता, तो उसको कि पिता से डॉक्टर में शिफ्ट होना बहुत मुश्किल नहीं था, मुश्किल नहीं था, लेकिन वो एक संबंध में अटक जाने के कारण से वो शिफ्ट करना मुश्किल हो गया था, मुश्किल हो गया था। इसीलिए हमारे हम सभी के जीवन में भी बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां आती है, तुरंत हमें एक्शन लेना पड़ता है, तुरंत हमें कार्य में लाना पड़ता है, उस समय हम घबरा जाते हैं। तो ये रोल कॉन्शियस में आना है, लेकिन रोल कॉन्शियस में आने से पहले अपने आप को आत्मा समझ करके कार्य में आते हैं तो कर्मों में कुशलता आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, बहुत ही मुख्य है, सबसे पहले है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मेडिटेशन करने के लिए या फिर कर्मों में आने के लिए। और इस शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। और दूसरी शक्ति है पावर टू पैक अप या समेटने की शक्ति। जीवन एक यात्रा है और जब भी यात्रा पर जाते हैं, आप भी इतने दूर दूर से आए हैं, यात्रा करके आए, कोई एक दिन, कोई डेढ़ दिन, कोई दो दिन सफर करके यहाँ आए हैं, तो आपका लगेज कैसा है, कितने सूटकेसेस लेके आए, एक सूटकेस, दो सूटकेस, चार सूटकेस, कितने सूटकेस लेके आए, एक ही सूटकेस, क्यों, एक ही बैग, बारिश के दिन है, थोड़ा सा ज्यादा लेके आते, धोने होने की चक्कर नहीं होता है ना, खुद को उठाना था इसीलिए खुद को उठाना पड़ेगा, इसीलिए खुद को संभालना पड़ता है। ट्रेन से मेजोरिटी लोग ट्रेन से आए तो कूली की सुविधा तो होती है, वहां किसी की मदद मिल जाती है ना, फिर भी आप क्यों नहीं ले आए। वैसे तो कहते हैं ना ट्रैवल लाइट, जब भी आप यात्रा करते जितना कम लगेज उतनी यात्रा सुखद होगा, है ना। जब आप सूटकेस तैयार कर रहे थे, जो चीजें बहुत ही जरूरत थी उन्हीं चीजों को आपने सूटकेस में डाली, जो लगा कि इस चीज के बिना हम चार दिन गुजारा कर सकते हैं, सब कुछ निकाल दिया, जो बहुत ही जरूरी थी वही उन्हीं चीजों को आप सूटकेस के अंदर डाला जीवन रूपी यात्रा में, जीवन रूपी यात्रा में अनावश्यक लगेज यहां ढोते डालते जाएंगे, डालते जाते हैं तो यहाँ इतना भारी हो जाता है। भारी हो जाने के बाद अगर पूछते हैं ना, जिंदगी कैसा चल रहा है, हाँ ठीक है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है, उमंग उत्साह ही नहीं है, इतना खूबसूरत जीवन है लेकिन फिर भी उसका आनंद नहीं लुटा पा रहे हैं। क्यों क्यों उसका आनंद नहीं लुटा पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ इतना भारीपन है, हैवीनेस है, एक्स्ट्रा लगेज है। तो इन एक्स्ट्रा लगेज को हमें निकाल देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा लगेज कौन सा है? अनावश्यक हम ढोते रहते हैं, कौन सा है? व्यर्थ संकल्प। नकारात्मकता तो है ही, वो तो है बहुत खतरनाक, है ना। उससे भी खतरनाक कौन सा है पता है? व्यर्थ। अगर गुस्सा आता है तो पता चल जाता है ये नेगेटिव है, ये नहीं करना। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब आता है तो पता चल जाता है ये नेगेटिव है। लेकिन वेस्ट ऐसा है, वो चोर गेट से आ जाता है। जैसे अगर शरीर का वेट बढ़ रहा है तो डॉक्टर कहते तो तला हुआ और स्वीट्स थोड़ा कम करो, ना खाए तो अच्छा है, लेकिन खाने में बहुत अटपटी चटपटी है, यहां तक अच्छा लगता है, लेकिन यहां से चले जाने के बाद अंदर वो विष है शरीर के लिए, वो जहर समान है, लेकिन यहां तक तो अच्छा लगता है ना। अटपटी चटपटी है लेकिन शरीर के अंदर जाने के बाद वो कार्य करना, मतलब लंबे काल तक हम उसको ग्रहण करते हैं तब वो जहर बनता है। एक दो बार करने से वो नहीं होता। ऐसे व्यर्थ चीजें भी, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ सोच भी लंबे काल तक जब हम करते हैं ना, वो फिर नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है। तो इसीलिए वो कब आता है पता नहीं चलता, आ जाने के बाद वो निकलने का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसके एडिक्टेड हो जाते हैं हम। तो इसीलिए उसको समझ करके उसको निकाल देने की जरूरत है। सबसे पहले प्रकार के जो वेस्ट थॉट्स है, वेस्ट विचार है, वो है पास्ट के बारे में सोचना। जो भी बीती हुई बातें हैं उसके बारे में बार बार सोचने से कुछ फायदा है? 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 15 साल पहले ऐसा हुआ था, देखा मैंने इसको इतना मदद की थी फिर भी इसने ऐसा किया, ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है, ये नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये है वो है, सारी जो नेगेटिव है। पॉजिटिव हम याद रखते हैं पास्ट के बारे में? पॉजिटिव बातें याद रखते हैं? नहीं, केवल नेगेटिव बातें याद रहती है। अगर रोज हम नौकरी करने जा रहे हैं, बस स्टॉप पर 9 बजे की बस पकड़ना है, तो रोज वहां के जो आते हैं 9 बजे उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाता है। 1 मास तक चलो उनके साथ फ्रेंडशिप हो गया, बातचीत किया, इधर उधर की बातें, हंसे, बहले, खेले, सब कुछ किया, मतलब 1 घंटे का सफर होता था तो फिर फ्रेंडशिप हो गया। लेकिन लास्ट दिन जो 31st day है तो वो थोड़ा सा किसी के साथ बहस, लड़ाई झगड़ा ऐसे जोरदार नहीं, लेकिन थोड़ा बहस हो गया किसी के साथ, ऐसे बातों बातों में बहस हो गया, तो ठीक है 2-4 दिन के बाद वो भी ठीक हो गया। फिर 3-4 मास के बाद कौन सी बातें याद रहेगी? 30 दिन के अच्छे दिन, अच्छा समय, या 1 दिन का बहस? एक दिन का बहस याद रह जाएगा। तो अगर हम तुलना करते हैं तो कौन सा ज्यादा है? सुख ज्यादा मिला है या दुख ज्यादा मिला है जीवन में? सुख ज्यादा है। 30 दिन के सुख की तुलना में 1 दिन का थोड़ा दुख। तो फिर भी हम सुख को छोड़ करके दुख को याद करते हैं। हर एक के जीवन में अगर देखते हैं सुख की तुलना में दुख बहुत कम मिला हुआ है, फिर भी हम दुख को पकड़ के बैठे हुए हैं। इट्स नॉट वर्थ इट, उसको छोड़ दीजिए। सुख को याद रखे और दुख को भूलने की आदत डालनी पड़ेगी। और वो आदत कैसे बनेगा? दुख को कैसे भूलेंगे हम? दुख को कैसे भूलेंगे? 30 दिन याद, लेकिन फिर भी क्या है वो एक दिन का वो उसने सो जो शार्प शब्द उसने बोल दिया ना, तो वो बार बार याद आ रहा है, बार बार याद आ रहा है। वो ऐसा कैसे बोल सकता है, ये हो सकता है, वो ही नहीं सकता, वो शब्द बार बार याद आ रहे हैं, फिर भी हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं, सुख के दिन याद करने की कोशिश कर, लेकिन दुख के दिन वो जो परिस्थिति है, वो जो घटनाएं घटी, वो हम भूल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उनको माफ नहीं करते हैं। माफ करने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे तब तक हम भूल नहीं पाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में ये जो दो शब्द साथ साथ जाते हैं, फॉरगिव, ओनली देन यू कैन फॉरगेट। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप भूल भी नहीं पाएंगे। क्षमा करना सीखना होगा। इजी है क्षमा करना? इजी है? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम अपना मन नहीं बनाते हैं क्षमा करने के लिए। क्यों नहीं मन बनाते हैं? देखा, मैंने इतना मदद की फिर भी उसने ऐसा बोला, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? उसका ना किए का तो सजा मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना, कहीं ना कहीं घृणा द्वेष दिल में है, जिस कारण से हम उनको क्षमा नहीं कर पाते। क्षमा करने से किसी और के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये समझने की बात है, खुद पर एहसान कर रहे हैं क्षमा करने से। क्षमा करने से किसी और पर एहसान नहीं कर रहे हैं, खुद पर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हम उन चीजों को लेट गो कर रहे हैं, निकाल रहे जिंदगी से, तो हम हल्के हो जाते हैं। तो इसीलिए क्षमा करना सीखना होगा, और महान व्यक्ति ही क्षमा कर सकते हैं। हम सभी को महान बनना है कि नहीं बनना है? महान बनना है कि नहीं बनना है? हाँ, तो नहीं तो क्षमा नहीं करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट होती जाएगी। एनर्जी को बचाना है तो क्षमा करना सीखना होगा। और क्षमा कैसे करेंगे? ठीक है, आपको क्षमा कर दिया, जाओ, हो गया, बन गई बात, बन गई बात, ऊपर ऊपर से तो मैं क्षमा कर रही हूं, ठीक है क्षमा कर लिया, स्माइल होकर के बात भी कर रही हूं, लेकिन मन ही मन इतना नफरत है उस व्यक्ति के प्रति, देखना इसने जो मेरे साथ किया है ना, ये दुखी होके मरेगा एक दिन। अंदर ही अंदर बहुत नफरत है उसके प्रति, लेकिन ऊपर ऊपर से स्माइल करके उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ये बद्दुआएं दे रहे हैं। क्षमा हुआ? ये क्षमा करना हुआ? नहीं। क्षमा करना माना अंदर से भी दुआ देना। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनको हम आशीर्वाद देते हैं ना, दुआ देते हैं कि ये फूले फले, आगे बढ़े, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, आसमान को छू जाए, ये बहुत तरक्की करे, बहुत नाम कमाए समाज में, बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारे दुआएं देते हैं। ऐसे ही क्या हम जिन्होंने भी हमें दुख दिया है उनको दुआ दे सकते हैं? जिन्होंने सुख दिया है उनको दुआ देना बहुत इजी है, जिन्होंने दुख दिया है उनको हम दुआ दे सकते हैं? दे सकते हैं, देते मतलब देना चाहिए वैसे, लेकिन देते क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुख है ना, मन में दुख लेकर के बैठे हुए हैं, इसलिए दुआ नहीं निकलती। इसलिए दुआ जब निकालते हैं ना, जैसे आशीर्वाद देना शुरू करेंगे आप, बहुत हल्का फील करेंगे, बहुत हल्का फील करेंगे आप। इस कोशिश करके देखिए, जिन्होंने भी दुख दिया है उनको इमर्ज करके, उनको याद करके उनको आशीर्वाद दीजिए। आज जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, छोटे मोटे दुख तो आप भूल भी जाते हैं, लेकिन बड़ी बड़ा दुख जिन्होंने दिया है, बहुत धोखा दे दिया होगा बिजनेस में या संबंधों में या किसी में, जैसे बहुत धोखा दे दिया होगा या बहुत बड़ा दुख दिया है, उनको इमर्ज करके उनको आशीर्वाद देने की कोशिश करें, फिर आप देखें आप कैसे फील करते, बहुत हल्का फील करेंगे, ठीक है। और दूसरे प्रकार के जो वेस्ट विचार है वो है अनावश्यक भविष्य की चिंता। यहां जो भी बैठे हैं सभी को चिंता है भविष्य को लेकर के, है कि नहीं है? है तो सही। रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, हमारे बच्चे बड़े होने के बाद क्या होगा, अगर कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा, कोई अचानक कुछ ऐसे घटनाएं घट गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा? समाज में बहुत कुछ घटनाएं देख रहे हैं, टीवी के द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे अनहोनी घटनाएं घट रही है, लगता है कई बार डर लगता है कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, डर लगता है भविष्य को लेकर के। क्या डरने से, चिंतित होने से समस्याएं कम होगी? हाँ? नहीं। तो क्या करना होगा? निश्चिंत हो जाए, निश्चिंत हो जाए, वो भी तो नहीं हो पाते हैं भविष्य को लेकर के निश्चिंत। चिंता करने से भी कोई लाभ नहीं, लेकिन निश्चिंत भी तो नहीं हो पाते। तो भविष्य के बारे में जरूर हमारे अंदर कंसर्न रहना चाहिए, उसके बारे में सोचना जरूर है, प्लानिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन चिंतित होने से कोई लाभ नहीं होगा। प्लानिंग और चिंता में क्या अंतर है? प्लानिंग और चिंता में क्या अंतर है? हाँ, अगर उसको एक व्यक्ति को पता चल गया कि 6 महीने के बाद मेरा रिटायरमेंट है, ठीक है, तो ठीक है, रिटायरमेंट प्लान तो उसने कर लिया कि वे इतना पैसा आएगा रिटायरमेंट के बाद, उसका क्या करना है सोच लिया, सब कुछ प्लान कर लिया, लेकिन हर रोज उठ करके वही सोचे इतने दिन के बाद मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, इतने दिन के बाद रिटायरमेंट होने, रिटायरमेंट के बाद ये करना, ये करना, वो करना है। एक बार सोच लिया ना, 2-3 बार मैंने प्लान, उसने प्लान कर लिया, हो गया, लेकिन बार बार वही सोच वो चिंता में परिवर्तन हो जाएगा। चिंता क्या है? एक ही प्रकार के सोच बार बार जब रिपीट करते हैं बिना कारण के, वो हमारी एनर्जी चली जाती है, वो चिंता है ना। तो वो समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वो चिंता का रूप ले लेता है, लेकिन समाधान के रूप में जब हम लेते हैं, समाधान जो ठीक है, एक समस्या है लेकिन उसका समाधान क्या है, समाधान के बारे में सोचते हैं तो फिर हमारा कोई ना कोई समाधान मिल ही जाता है। केवल समस्या के बारे में सोचते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए भविष्य को लेकर के कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है नेगेटिव? अगर मोहल्ले में चोरियां हो रही हैं तो रोज हस्बैंड वाइफ जॉब के लिए जा रहे हैं 9 बजे और वो ताला लगा करके यही सोच, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, सोच सोच करके अच्छी तरह डबल लॉक करके खिड़की दरवाजा सब कुछ बंद करके अच्छी तरह करके फिर जा रहे हैं, दोनों ये विचार कर रहे कहीं चोरी ना हो जाए, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? कुछ दिन के बाद चोरी तो जरूर होनी है उनके घर में। क्यों होगी? कहीं चोरी ना हो जाए ये सोच रहा नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी है। चोरों को तो निमंत्रण तो नहीं दिया उन्होंने, हे चोर आकर के हमारे घर चोरी कर लो, उन्होंने निमंत्रण दिया? ये इनडायरेक्ट निमंत्रण है, इनडायरेक्ट निमंत्रण है। कैसे इनडायरेक्ट निमंत्रण हुआ? नेगेटिव एनर्जी भेजी है। मैं एग्जाम्पल देती हूं आपको, अगर मैं आपको कहूं अगले 30 सेकंड के लिए आपको बंदर नहीं सोचना है, अगले 30 सेकंड में आपको बंदर के बारे में नहीं सोचना है, क्या करेंगे आप? बंदर के बारे में ही सोचेंगे, उसी का चित्र आ गया दिमाग में। क्यों? मैंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? बंदर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन वही आया क्योंकि बंदर शब्द सुना तो वही चित्र आ गया। फिर कहिए बंदर भाग जा, वो तो जाएगा ही नहीं ना, आ तो गया एक बार, आ तो गया एक बार। ऐसे ही जो चीज हमें नहीं चाहिए ना, उसके बारे में नहीं सोचना है। चोरी के बारे में सोच सोच करके हमारे घर चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरों को हम वाइब्रेशंस दे रहे हैं, मन की शक्ति दे रहे हैं। लगातार हर रोज हमने निमंत्रण दिया कि हर रोज कोई आकर के आपको निमंत्रण, प्लीज हमारे घर एक दिन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपको तो जाना नहीं है, फिर भी ये इसका पीछा छुड़वाने के लिए चलो जाके ही आ जाते हैं, जाके तो आएंगे। बार बार कोई निमंत्रण देता है आपको, प्लीज आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो ऐसे ही चोरों को निमंत्रण दिया, बार 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 एनर्जी भेजी, तो वो तो एक दिन आएगा ही ना, चोरी करते। तो चोरी के बारे में ना सोच करके किसके बारे में सोचना है, किसके बारे में सोचना है? सुरक्षा के बारे में। मेरा घर सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, तो फिर वो एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगा। अगर कोई चोर आएंगे भी चोरी करने के लिए, वे बिना कारण कुछ ना कारण बनकर के वो निकल जाएंगे वहां से, क्योंकि वो एनर्जी अट्रैक्ट ही नहीं करेगा उनको, है ना। तो जो चाहिए जीवन में उसी के बारे में सोचना है, जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तंदुरुस्ती चाहिए तो तंदुरुस्ती के बारे में सोचना है, बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, कहीं मुझे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, नहीं, मैं तंदुरुस्त हूं, तंदुरुस्त रहूंगी। डर डर के ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए तो क्या होगा, कहीं ना कहीं ठोकेंगे जरूर, है ना। नहीं, कॉन्फिडेंस, नहीं कुछ नहीं होना, मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित, तो उसके बारे में सोचेंगे तो वो होगा, है ना। तो भविष्य की चिंता को दूर करने के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचे। और दूसरी बात यह है कि भले हम कितना भी कमजोर है, लेकिन हमारा साथी कौन है, हमारा साथी कौन है? परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है वो हमारा साथी है, तो क्या करेगा आंधी और तूफान, है ना। क्योंकि वो भले मैं निशक्त हूं, लेकिन मेरे साथ पहलवान है, सर्वशक्तिमान है, तो वो परिस्थितियों को सामना करने के लिए मेरे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। तो फिर भविष्य के बारे में जो एक्स्ट्रा लगेज है उसको हम निकाल सकते हैं। ये दोनों एक्स्ट्रा लगेज निकल गया तो वर्तमान में हम जी सकते हैं। वर्तमान में जब हम जीते हैं तो भविष्य तो उज्जवल होगा ही, तो जिंदगी का जो सफर है बहुत ही सुखदायी रहेगा, ठीक है। और तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, सहनशीलता की शक्ति। सहनशीलता आप क्या कहेंगे, वो शक्ति है या कमजोरी है? हम यहां कह रहे हैं कि सहनशीलता एक शक्ति है तो इसलिए कह रहे हैं, कमजोरी है हमारे लिए शक्ति है और दूसरों के लिए कमजोरी है। कोई लोग उल्टा भी सोचते हैं, दूसरों के लिए शक्ति है लेकिन हमारे लिए कमजोरी है। दूसरे सहन करे तो अच्छा है, लेकिन मुझे बिल्कुल सहन नहीं करना है। अगर मैं सहन करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मन के अंदर बैठा हुआ होता है, जो झुकेगा वो मरेगा। तो इसलिए झुकना ही नहीं है। भले दूसरा व्यक्ति अगर सहन करते, कितना अच्छा व्यक्ति है, वो तो देवता समान है, वो तो कुछ नहीं बोलते, कितना सहन कर रहे, लेकिन मुझे तो नहीं करना है, मुझे तो नहीं करना है। कभी भी कुछ ऐसी बात आई तो वो ऐसे कुछ लगता है कि कुछ हो, कुछ बातें उठने वाली है, दो चार बोल दो तो ताकि वो थम जाए। तो ये कुछ भावनाएं होती है लोगों की कि नहीं, थोड़ा अपना दबदबा बना के रखना चाहिए, अपना रोब चलाना चाहिए, तब जाकर के चीजें परिस्थितियां अपने कंट्रोल में रहेगा। सहन तो बिल्कुल नहीं करना है। ये राइट है या रॉन्ग है? ये राइट है या रॉन्ग है? राइट है, सही है गलत है? गलत है, क्योंकि उस सिलसिले में बहुत सारे संबंध हमारे कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। भले नाम के लिए हमारा साथ देते हैं, लेकिन अंदर से, दिल से वो हमारे साथ नहीं देते हैं। दिल से वो हमें रेस्पेक्ट नहीं देते। भले कुछ दबाव के कारण से वो रेस्पेक्ट दे रहे होंगे, लेकिन हमारे पीठ के पीछे क्या बोलते वो भी पता चलता है ना? तो इसीलिए सहन करना सीखना पड़ेगा हमें। और आजकल फैमिलीज, परिवार क्यों टूटते जा रहे हैं? कुछ साल पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करता था, दो चार फैमिलीज एक साथ रहा करते थे, इतने सारे लोग, 15-20 लोग, 50 लोग एक साथ रहते थे। लेकिन आजकल के जमाने में 4 लोग भी एक साथ रहना बहुत मुश्किल लगता है। क्यों? सहनशीलता की कमी के कारण से एक दूसरे को हम सहन नहीं कर पाते। अपने लोगों को ही हम सहन नहीं कर पाते हैं तो दूसरों का क्या कहना है ना? जिस कारण से परिवार टूटते जा रहे हैं, वहां ताकत नहीं है, वो एक साथ हम नहीं जी पाते हैं। तो इसीलिए सहन करना सीखना होगा। कई बार रॉन्ग तरीके से सहन करके हम कहते हैं फिर बाद में कि कब तक, आखिर कब तक, क्या मुझे ही सहन करते रहना पड़ेगा? सामने वाला भी समझे ना, सामने वाले को भी थोड़ा सा ये हो जाए, समझ आ जाए क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं। ऑफिस में बॉस बिना कारण डांट लगा रहा है, बिना कारण ये हो रहा है, चुप है। क्यों चुप है? नौकरी का सवाल है। अगर मैं बोल दूं तो नौकरी ना चला जाए मेरा, तो इसलिए चुप है। लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा है, उसको तो अच्छी तरह मैंने ठीक तरह सहन नहीं किया, अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा है। बाहर तो चुप चुप थी, मुख तो बंद था, लेकिन अंदर अंदर बहुत आग, बहुत, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो ऊपर का सेफ्टी वाल्व नहीं निकला तो वो फटेगा। ऐसे ही हमारा कहां जाकर के फटता है, कहां जाकर के फटता है? घर वालों के बीच में। घर वाले ही अपने ही है ना, भाग तो नहीं जाएंगे, एक प्रकार से विश्वास है। तो इसलिए उनके ऊपर बार 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 जाकर के गुस्सा करना, फ्रस्ट्रेशन, ये सब निकालते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन उस उन परिस्थितियों के कारण से नहीं, जो फ्रस्ट्रेशन ऑफिस में क्रिएट हुआ है, उन वो फ्रस्ट्रेशन सारा हम घर में निकाल रहे हैं घर वालों के सामने। तो ये तो फिर घर का वातावरण फिर खराब हो जाता है ना, वहां शांत हो जाता है वातावरण, वो भी तो राइट नहीं है। तो यहाँ का तनाव जाकर के दूसरे जगह पे छोड़ देना। तो इसलिए सहनशीलता माना बाहर से भी चुप और अंदर से भी शीतल शीतल, है ना? तब जाकर के उसको सहनशीलता कहेंगे। और सहन करने के लिए बहुत मुख्य गुण चाहिए, वो है प्यार। प्यार, जहां प्यार है वहां सहन हम ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। बच्चा छोटा है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, रात भर भी जाकर के उसकी देखभाल करेंगे ना? ये कहेंगे कौन सी मुसीबत आन पड़ी पता नहीं, ऐसे कहेंगे नहीं, मेरा बेटा है ना, मेरा बच्चा है ना, तो रात रात भर जाकर के भी उसकी देखभाल करेंगे, कोई भी असुविधा हो उसको झेलेंगे क्योंकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन वही अपने रिलेटिव के बच्चे को आपके घर में छोड़ा है पढ़ाई करने के लिए, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, आप क्या करेंगे? उसकी देखभाल करेंगे? हाँ? नहीं, वो बार बार बीमार पड़ता है, मेरे पास टाइम नहीं, उसको ले जाओ। क्यों 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 अंतर आ गया यहां? ये मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा नहीं है, वो अंतर आ गया। इसको हम सहन कर रहे हैं, उसको हम सहन नहीं करते हैं। बेटियों को सहन करते हैं, बहुओं को नहीं करते। अपनापन, जहां प्यार है, जहां अपनापन है, वहां सहन करना इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। चाहे थोड़ा भी परायापन आ गया ना, थोड़ा सा फिर रिजेक्शन शुरू हो जाता है, फिर सहन करना नहीं होता है। इसीलिए सहनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या बढ़ाना होगा? स्नेह। हर व्यक्ति अपना है, जो भी अपने परिवार में है, चाहे वो कहीं भी है, तो वो हर एक के प्रति अपनेपन की भावना होता है, तो सहन करना इजी हो जाता है। और दूसरी बात है, सहन करने के लिए स्वमान में स्थित होकर के सहन करना इजी है। कई बार लोगों को ये भावना क्यों होता है कि जो झुकता है वो मरता है, उसको ज्यादा झुकाया जाता है, उसको ज्यादा ही मरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो स्वमान में स्थित होकर के सहन नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हीन भावना है, कहीं ना कहीं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिस कारण से दूसरे उसका लाभ उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। इसीलिए उसके बजाय क्या सोचना है कि मैं आत्मा हूं, स्वमान मना क्या, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सहन करना आत्मा का गुण है। वो प्यार, प्रेम, शांति, सहनशीलता, ये सब आत्मा के गुण है। आत्मा के शक्तियों को इमर्ज करके सहन करेंगे, वो सहन करना बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आकर के सहन किया तो क्या करूं, मुझे करना ही पड़ेगा, मैं तो उसके नीचे ही हुई ना, तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये सोच करके करेंगे, वो फिर लंबे काल तक नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। तो इसलिए दो चीजें बहुत जरूरी है सहन करने के लिए, एक है स्नेह और दूसरा है स्वमान। ओके, तब जाकर के जैसे यहां मूर्ति जब बनता है तो हथौड़े तो लगते ही है। जीवन में भी बहुत सारे जो समस्याएं आती है तो वो किसके लिए आते हैं समस्याएं? हमारे ही शक्तियों को बढ़ाने के लिए। मूर्ति हम बन रहे हैं ना, पत्थर से मूर्ति बनने के लिए हथौड़े तो खाना ही पड़ेगा, हथौड़े खाए बिना मूर्ति नहीं बन सकता। ऐसे सोचते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो सहन करना इजी हो जाता है, भारी नहीं होता। और अगली शक्ति है, नेक्स्ट शक्ति है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। समाने की शक्ति, इस चित्र में क्या देख रहे हैं? सागर। और सागर की विशेषता क्या है? सागर की विशेषता क्या है? सब कुछ समा लेता है, हमेशा के लिए समा लेता है, रिटर्न भी कर देता है। जो भी कोई भी चीज सागर के अंदर जाता है ना, नदी, नदी के साथ शहर का सारा किचड़ा भी जाता है, है ना, सागर में वो छोड़ देते हैं ड्रेनेज इसको। तो सागर क्या करता है? सब कुछ ले तो लेता है, फिर क्या करता है? सारे किचड़े को है ना वो बाहर फेंकता है, किचड़े को वो अपने गर्भ में नहीं लेता है। इसलिए सागर के अंदर जब जाते हैं पानी एकदम शुद्ध, सागर के तले में भी जब जाते हैं, अंदर नीचे चले जाते हैं, तभी भी पानी बहुत शुद्ध है। किचड़ा सारा किनारे पर है, किचड़ा सारा क्योंकि सागर सारा फेंक दिया। के ऐसे ही संसार रूपी सागर में हर एक के साथ हमें एडजस्ट होकर के चलना है, तो क्या करना होगा? सागर की जो ये विशेषता है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या कहें, इसके साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकते, इसके साथ भी एडजस्ट नहीं हो सकते, ये ना ये तो बहुत अहंकारी है, इसको है ना ये तो बहुत जलसी है, इसके अंदर ये बहुत खड़ूस है, ये है वो बहुत ये करता है। तो हर एक के अंदर मैं वीकनेसेस देखती रहूं, कमजोरियां देखती रहूं, तो किसी के साथ भी मैं एडजस्ट होकर के चल नहीं सकती। तो इसलिए क्या करना होगा, क्या करना होगा? हर एक के अंदर विशेषता को देखना जरूरी है, जरूरी है। क्योंकि ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है संसार का, कि इस संसार में कोई भी 100% गुणवान नहीं है, और इस संसार में कोई भी 100% अवगुण वाला भी नहीं है, है ना। जब मेरे अंदर परसेंटेज है गुण और अवगुण का, हर एक के अंदर परसेंटेज है ना, कुछ गुण है कुछ परसेंटेज में अवगुण है, तो अपने अंदर भी कुछ परसेंटेज में गुण और कुछ परसेंटेज में अवगुण है, तो मैं सामने वाले व्यक्ति से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो 100% गुण वाला होना चाहिए, उसके अंदर कोई अवगुण ना हो, वो हो नहीं सकता। लेकिन संबंध जोड़ने से पहले हमें परखने की जरूरत होती है, राइट, परखने की जरूरत होती है, चाहे वो कोई संबंध जोड़ने में या फिर बिजनेस के लिए भी, कोई भी ऐसा संबंध हम जोड़ने जा रहे हैं तो अच्छी रीति व्यक्ति को परखने की जरूरत होती है। एक बार परख लिया, परखते समय हम ये लक्ष्य रखें कि 100% वो गुण वाला होना चाहिए। कोई मिलेगा ऐसे? कोई मिलेगा ऐसे? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ तो अवगुण होगा, कुछ तो वीकनेसेस होंगे उसके अंदर, तो ठीक है, मेजॉरिटी अच्छा ही है, हमने उसके साथ संबंध जोड़ लिया। लेकिन संबंध जोड़ने के बाद 3-4 मास के बाद, 8-10 या 1-2 साल के बाद, उसके धीरे 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 अवगुण दिखाई देने लगते हैं। अवगुण दिखाई जब देने लगते हैं, केवल हम अवगुणों पर फोकस करेंगे तो क्या होगा? और बिगड़ जाएगा संबंध। जब हमने अपनाया है तो उसके गुण और अवगुण सहित हमने उसको अपना लिया है, चाहे वो बहू के रूप में, चाहे वो एम्प्लॉई के रूप में, ऑफिस में कोई भी काम के लिए हम किसी को हायर करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं, सोच सकते हैं कि वो 100% गुण होना चाहिए, उसके अंदर भी वीकनेसेस है। तो हम अपने आप उसको अपना लिया, हमारे हो गए। तो अपने हो गए, अपने हो जाने के बाद अगर अवगुण पर ध्यान भी जाएगा तो क्या करना होगा? उसको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके तुलना में तो ये तो इतने सारे गुण है ना उसके अंदर, भले थोड़ा बहुत आलसी है लेकिन अच्छा व्यवहार तो रखते हैं, ये तो है, वो मतलब भले थोड़ा बहुत अवगुण है लेकिन उसकी तुलना में गुण भी तो बहुत सारे हैं। गुण पर जब बार बार फोकस जाता है, अवगुण को हम इग्नोर करना शुरू करते हैं। लेकिन टेंडेंसी हमारा क्या है? अवगुण पर ही ज्यादा ध्यान जाता है। अगर आपको कहे कि आपके बच्चों का, चलो किसी और का नहीं, आपके बच्चों के अवगुण कौन कौन से हैं, फटक से बोलेंगे ये है, ये वो, ये करता है, वो करता है, ये करता है, ये करता है। अगर कहे आपके बच्चों के गुण क्या है, विशेषता क्या है, वो बताइए, थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। क्यों? क्यों? क्योंकि ज्यादा मैंने उसके बारे में सोचा है, अवगुण को के बारे में सोचा है, तो इसलिए फटक से आ जाता है। गुणों के बारे में सोचा ही नहीं तो सोचने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, है ना। है तो सही उसके अंदर गुण, लेकिन सोचने के लिए समय जाता है ना। तो लेकिन आप अभी से क्या करना है, आपको अभी से क्या करना है, केवल गुणों को देखने की आदत डालनी होगी। अगर ठीक है, अवगुण पर ध्यान गया, अगर आपके अंदर हिम्मत है, शुभ भावना है उस व्यक्ति के प्रति, तो क्या कर सकते हैं आप, उसको पर्सनली जाकर के बता सकते, देखो ये जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो आप शुभ भावना है तो बता सकते, लेकिन हम अक्सर करके क्या करते हैं, उसके सामने ना जाकर के, ना करके, कह करके 10 लोगों के बीच में उसका अवगुणों का वर्णन करते हैं। ये राइट है? ये राइट है? नहीं। तो अवगुणों का वर्णन करना है तो वो खुद उसके सामने ही जाकर के बोले कि हाँ, इस आपके, मुझे लगता है कि ये आप जो कर रहे हो ठीक नहीं है। लेकिन 10 लोगों के सामने उसका वर्णन करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। एक तो है, वो है रॉन्ग है क्योंकि उसके उसके साथ संबंध टूट जाएगा, और दूसरी बात क्या होता है पता है, बार 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 किसी के अवगुणों का वर्णन हम करते हैं तो क्या होगा पता है, एक दिन वो अवगुण हम अपने अंदर पाएंगे, हमारे अंदर आ जाता है, क्योंकि उसी को मैंने एनर्जी दिया ना बार बार। भविष्य के बारे में भी क्या बोला, जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचेंगे वो आ जाता है। अवगुणों के बारे में भी वही है, अवगुणों के बारे में बार बार मैं सोच रही हूं वो अवगुण अपने अंदर आ जाएगा। तो इसलिए अवगुण ना आए तो क्या करना है, गुणों के बारे में सोचना है। गुणों के बारे में सोचते गुण आएंगे, अवगुणों के बारे में सोचेंगे अवगुण अपने अंदर आ जाएगा। तो अवगुण अपने अंदर आएगा तो मेरे चारों तरफ खुशबू होगा या बदबू होगा? बदबू, क्योंकि मैं जो मुंह खोलूं तो नेगेटिव ही बोलना शुरू करूंगी। डस्टबिन के आसपास तो बदबू ही होगा, तो मेरे दिमाग, मेरे मन, मेरा मन भी डस्टबिन के समान हो गया, क्योंकि हर एक के नेगेटिव ले लेकर के मेरा ये डस्टबिन हो गया, तो मेरे से नेगेटिव ही निकलेगा, है ना। तो तब हम किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, समा नहीं सकते हैं। और संसार में रह रहे हैं तो लोगों के साथ एडजस्ट होकर के रहना सीखना होगा, सीखना होगा। तो इसके लिए केवल गुणों को देखने की आदत हम डालें, है ना। और नेक्स्ट शक्ति है परखने की शक्ति। कोई भी डायमंड को परखना है तो लेंस के नीचे रखते हैं तो पता चलता है कि उस डायमंड में, उस हीरे में कितना दाग है। और सोने को परखने के लिए पत्थर पर घसीटते हैं, ये करते हैं कसौटी पर, पत्थर पर, तो पता चलता है तो वो कितना कैरेट का गोल्ड है। ऐसे ही जैसे मैंने कहा था कि सहन करना अच्छी बात है, एडजस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन संबंध जोड़ने से पहले हम उस व्यक्ति को परखते हैं, राइट। तो परखने के लिए कौन सी गुणों की आवश्यकता है, किस आधार से हम परख सकते हैं, किस आधार से हम परखते हैं लोगों को या हम दो चीजों को परखते हैं, व्यक्ति को और परिस्थिति को, उस परिस्थिति में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दो चीजों को परखते हैं। तो परखने के लिए क्या चीज चाहिए हमें, परखने के लिए क्या चीज चाहिए, समझना चाहिए, समझ चाहिए, विवेक चाहिए, और क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान पर्याप्त है या और भी कुछ चाहिए? पेशेंस भी चाहिए, ठीक है। सब कुछ मिला करके अगर एक शब्द कहे वो क्या कहेंगे, वो एक शब्द कौन सी है जिसके आधार से हम परख सकते हैं? विजडम हम कह सकते हैं, क्योंकि अपने अनुभव के आधार से अगर हम परखते हैं ना, कई बार गलत भी हो सकता है। केवल अगर मैंने एक किसी व्यक्ति से गलत अनुभव किया हुआ है तो उस व्यक्ति को मैं उसी के दृष्टिकोण से देखती हूँ ना जो मेरे साथ, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी नहीं भी हो सकता है, राइट। केवल अपने अनुभव के आधार से किसी को परखते हैं वो 100% राइट नहीं भी हो सकता है कई बार, है ना। तो विजडम की जरूरत है, प्रज्ञा। तो वो प्रज्ञा क्या चीज है, वो तीन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं हमें मिलती है वो न्यूज़पेपर और टीवी के द्वारा, जो भी मैंने जो भी कहते हैं वो इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। अगर आपको किसी ने एक लाइन का इंफॉर्मेशन दिया, क्रोध नहीं करना चाहिए, तो वो इंफॉर्मेशन ज्ञान में कैसे परिवर्तित होगा? एक लाइन का इंफॉर्मेशन है क्रोध नहीं करना चाहिए, वो ज्ञान में कैसे परिवर्तित होगा? हाँ जी, इंसिडेंट्स की बात नहीं, इंफॉर्मेशन है, क्रोध नहीं करना चाहिए इंप्लीमेंट करने से, नहीं उसके पहले कुछ और चीज की जरूरत होती है। वो इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन के अंदर समझ नहीं है, माना क्यों क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हानि क्या होगा, क्रोध न करने से लाभ क्या होगा, कुछ भी पता नहीं। किसी आप किसी बुजुर्गों ने या कोई संतों ने आपको कह दिया, आपके गुरुजी ने या किसी बड़े ने आपको कह दिया आपको क्रोध नहीं करना है, केवल एक शब्द है, एक लाइन है, लेकिन उसके आगे पीछे कुछ पता नहीं। क्यों नहीं करना चाहिए क्रोध, क्रोध करने से हानि क्या होगा, क्रोध न करने से लाभ क्या होगा, और क्रोध के कंट्रोल, क्रोध को कंट्रोल करने की विधि क्या है, उसके बारे में बिल्कुल समझ नहीं है उस इंफॉर्मेशन में। माना इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग, समझ इज इक्वल टू नॉलेज। इंफॉर्मेशन में जब समझ आ गई, समझ मुझे आ गया वो क्यों है, कैसे है, समझ के अंदर ताकत है। ज्ञान क्या है, समझ है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, किसने बोल दिया हाँ ठीक है, नहीं समझ है, वो फिर ताकत बनेगा, है ना। केवल इंफॉर्मेशन में ताकत नहीं है, ज्ञान में ताकत है, क्योंकि समझ है वहां, है ना। तो फिर वो ज्ञान पता चल गया, क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, वो समझ सारा मिल गया, समझ को, ज्ञान को फिर प्रज्ञा या विजडम में कैसे परिवर्तित करेंगे, हाँ इंप्लीमेंटेशन। ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, समझ क्यों नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा, ये सब कुछ समझ है, थ्योरेटिकल नॉलेज। वो जो समझ है मैं इंप्लीमेंट करना, कर्मों में लाना शुरू किया, जब भी मुझे क्रोध आना शुरू हुआ तो उसको कंट्रोल करना शुरू किया, करते 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 ऐसा समय आया मैं पूर्णतः क्रोध मुक्त हो गई। फिर एक रोशनी आती है, कुछ ऐसे अंदर कुछ एनलाइटनमेंट आता है, कुछ ऐसे अंडरस्टैंडिंग, कुछ समझ जिंदगी के बारे में आता है, वो है अनुभव। करते करते अनुभव आएगा ना, ज्ञान प्लस अनुभव इज इक्वल टू प्रज्ञा, विजडम। विजडम में ज्ञान और अनुभव दोनों होगा, तब जाकर के वो हमारी ताकत और बढ़ेगी। और अनुभव करते 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 हम ये कहे कि 60-70 साल के बाद ही हमारे अंदर विजडम आएगा, क्योंकि करते करते मैंने इंप्लीमेंट करते करते कर्मों में लाते लाते तो 60-70 साल हो ही जाएगा ना। अगर 15-20 साल 25 साल के बच्चों में वो प्रज्ञा नहीं है या वाइज नहीं कह सकते उनको, ऐसा है वो भी वाइज हो सकते हैं कैसे, आध्यात्मिकता को धारण करते हुए। आध्यात्मिकता को जितना हम समझते जाएंगे, भले अपनी जिंदगी में वो घटनाएं घटेगी नहीं, लेकिन समझ इतना गहरा होने के कारण से, जीवन के बारे में, जिंदगी के बारे में समझ इतना गहरा होने के कारण से, वो 15-20 साल में भी बहुत मतलब उनके अंदर विजडम आ सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के अंदर था, मतलब यंग एज में ही बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति माना जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यंग एज में ही जीवन के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने के कारण से उनके अंदर वो प्रकाशता, वो एनलाइटनमेंट था। और फिर उस प्रज्ञा होने के कारण से हमारी बुद्धि जो है वो बहुत क्लियर रहेगा, क्लियर होने के कारण से हमारी जो परख, परिस्थिति और व्यक्तियों के प्रति हमारी परख बहुत एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेट। जितना जितना हम मेडिटेशन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, अपनी बुद्धि जो है वो साफ होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा, कंफ्यूजन्स क्लियर होता जाएगा, तब जाकर के हमारी जो ये है परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, ठीक है। और उसके कनेक्टेड शक्ति है नेक्स्ट जो है वो निर्णय करने की शक्ति। जैसे हम परखते हैं उसके आधार से हम निर्णय करते हैं, राइट। और ये जो हम चित्र देख रहे हैं न्याय की देवी की मूर्ति, ये अक्सर हम कहां देखते हैं इस मूर्ति को, कोर्ट में। और न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार है और आंखों पर पट्टी है। तराजू किसका प्रतीक है? इंसाफ, है ना, इम्पार्शियल डिसीशंस, कोई पार्शियलिटी ना हो। और तलवार, तलवार ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान तलवार, ज्ञान रोशनी कहा जाता है, जिस आधार से हम एक टुक होकर के निर्णय हम ले सकते हैं। और तीसरी बात है आंखों पर पट्टी। आंखों पर पट्टी माना अपना पराया न देखते हुए हम सही निर्णय लें, ऐसे हा? तराजू का मतलब भी वही है, तोल करके निर्णय ले। आंखों पर पट्टी माना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करना। ये आंखों पर पट्टी का मतलब ये भी हो सकता है ना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना लेकिन जो देखते उस पर विश्वास नहीं करना, ऐसे समान दृष्टि से देखना, ऐसे अगर आंखों पर पट्टी बंद होता, बांध करके अगर निर्णय लेते हैं या फिर आंख बंद करके निर्णय लेने से हमारा निर्णय राइट होता तो महाभारत नहीं होता, महाभारत नहीं होता, है ना। जब भी उन्होंने निर्णय लिया, गलत निर्णय लिया, पुत्र मोहवश उन्होंने गलत निर्णय लिया, हाँ वो तो वो उसकी बात है, लेकिन हम किस बात के बारे में कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के बारे में, राइट। वो जो भी करेंगे उनका वो रिटर्न वो भोगेंगे, उसके बारे में हम बहस नहीं करेंगे। हम यहां आए हैं अपने जिंदगी में कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए, अपने कर्मों को परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। हमारे निर्णय राइट होए, किसी का हो या ना हो, हमारे जो डिसीशंस है वो राइट हो, बस, राइट। तो इसीलिए आंखों पर पट्टी माना क्या है, ये मैसेज दे रहा है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो इसीलिए जो आप देखते हैं ना उस पर तुरंत निर्णय नहीं लेना है। जैसे बचपन में हम एक छोटी सी कहानी सुनते थे कि ये जंगल में एक परिवार बसा था और वो हस्बैंड जो है रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते थे और वो वाइफ जो है वो घर में बच्चे के साथ रहती थी। उनके घर में एक नेवला पाल के रखा था। एक दिन वो महिला पानी भरने गई, वो जब आई वापस नेवला बहुत खूद खूद करके कुछ दिखा रहा था, उसके मुंह के ऊपर खून के डब्बे थे। तो महिला ने क्या सोचा, शायद इस नेवले ने मेरे बच्चे को मार दिया। तो वो घड़े से उस नेवले को वहां मार करके अंदर जाके क्या देखा उसने, सांप मरा था, बच्चा खेल रहा था। बाद में उसको बहुत अफसोस हुआ, मेरे बच्चे को जिसने उसकी जिसकी रक्षा की, जिसने रक्षा की उसको मार दिया मैंने, बहुत अफसोस हुआ। तो खून के डब्बों को देख करके उस महिला ने कुछ और ही सोच समझा। ऐसे ही हम सभी के जीवन में ऐसे कोई कुछ परिस्थितियां आती है जिसको देख करके तुरंत हम अपने ही सोच, ये क्यों हुआ, शायद इसके कारण से ऐसा हुआ, इसके शायद इसने ऐसा किया होगा, इसके कारण अपने ही मन घड़ित कहानियों के बारे में सोच सोच करके फिर गलत निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय लेने के बाद हम पछताते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी दिखाई देता है ना, थोड़ा सा पेशेंस। अगर वो उस महिला ने थोड़ा सा पेशेंस रखा होता ना, कि अंदर जाकर के देख लिया होता उसने, तो पता चलता कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो जो भी दिखता है, जो भी दिखाई देता है आपको, उस पर तुरंत निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा सा धीरज करके फिर अच्छी रीति एनालाइज करके फिर निर्णय लेना है। निर्णय लेना है, तुरंत निर्णय नहीं लेना है। जिंदगी में सुबह से उठते ही हमारे निर्णय लेना शुरू हो जाता है। उठते ही चाय पीना है, कॉफी पीना है, जूस पीना है, लाल कपड़ा पहनना है, पीला कपड़ा पहनना है, पोहा खाना है, उपमा खाना है, परोठा खाना है, एक मतलब छोटे मोटे निर्णय हम लेना शुरू कर देते हैं। उपमा के बजाय पोहा खा लिया, पोहा के बजाय परोठा खा लिया, तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाय के बजाय कॉफी पी लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लाल कपड़े के बजाय पीला कपड़ा पहन लिया, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो जिंदगी में जो बहुत मुख्य निर्णय जब हम लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जब लेते हैं, तब जाकर के थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत है। और दूसरी बात है, आंखों पर पट्टी माना, अपने अंतर मन की आवाज को सुनना, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, अपने अंतर मन की आवाज को सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। इंट्यूशन को जब हम सुन करके उस अनुसार कर्म करते हैं, वो इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं बोलता। अंतर मन की आवाज कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन उसके अनुसार चलने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए, हिम्मत है तो हम सही रास्ते पर जा सकते हैं। अगर हिम्मत, आवाज तो कह रहा है ये नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से मैं उसका सुना अनसुना कर करके फिर जो नहीं करना चाहिए वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले जब चोरी करता है तो अंदर से आवाज आता है उसको, नहीं चोरी करना पाप है, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, लेकिन उसका सुना अनसुना करके वो चोरी करना शुरू किया, तो वो एक बार, दो बार, तीसरी बार, चौथे बार, पांचवी बार भी जब चोरी कर रहा है तभी भी वो बोल रहा है, लेकिन धीरे 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 आठवें बार, दसवें बार जब चोरी किया वो आवाज बंद हो गया। इसको विवेक का खून करना कहते हैं। अपने ही विवेक का जब खून कर देते हैं ना, अपने ही इंट्यूशन का जब हम खून कर देते हैं, वो बोलना बंद कर देता है। जब बोलना बंद कर दिया तो हम गलत रास्ते पर तुरंत, और 15वीं बार या 20वीं बार जब चोरी करना शुरू करता है उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे मर्डरर्स का भी, मर्डर करना जैसे दाई हाथ का काम हो जाता है, भाई हाथ का काम हो जाता है उसको, है ना। उसको अंदर से गुड गिल्ट फीलिंग होता ही नहीं है, तो वो गलत है ना। तो इसीलिए वो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, सुन करके उसके जैसे चलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। और उसके लिए सुनना जरूरी है ना, सुनने के लिए क्या करना होगा, कई बार वो आवाज आता है लेकिन कई बार लगता है कि ये अंतर मन की आवाज है या नहीं है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। माना अंतर मन की आवाज को सुनने के लिए मन की आवाज को शांत करना होगा। बहुत सारी बातें अगर मन में चल रहा है तो जैसे रेडियो स्टेशन, दो तीन रेडियो स्टेशन एक साथ मिक्स हो जाता है तो क्या होगा, किचपिच 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 चल रहा है तो पता ही नहीं चलता है कि ये विविध भारती का स्टेशन का क्या है, क्या आ रहा है ना। तो ऐसे मन की आवाज, इंट्यूशन की आवाज, सारा मिक्स होकर किचपिच हो रहा है तो समझ में आ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो इसीलिए क्या करना है, मन की आवाज को शांत करना होगा। जितना शांति की शक्ति को अभ्यास करते जाएंगे, अपनाते जाएंगे, मन को शांत करने की आदत हम डालते जाएंगे, उतनी इंट्यूशन की आवाज को हम सुन पाते हैं। डिसीशन पावर को, निर्णय की शक्ति को अगर बढ़ाना है तो क्या करना होगा? शांति की शक्ति को बढ़ाना होगा। मन शांत करे, मन को शांत जितना हम करते जाएंगे निर्णय की शक्ति बढ़ती जाएगी। और सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। एक था सहन करने की शक्ति और उसका जस्ट अपोजिट है सामना करने की शक्ति। कई बार लगता है ना कि पता नहीं चलता है कि सहन करना है या सामना करना है, या हर परिस्थिति में मुझे सहन करना है। हर परिस्थिति में सहन करते जाएंगे वो भी रॉन्ग है। तो सहन करना भी शक्ति है, सामना करना भी एक शक्ति है। उस परिस्थिति में हमें सहन करना है या सामना करना है, खुद को निर्णय लेना होगा। कैसे निर्णय लेंगे? कौन सी परिस्थिति में सहन करना है और कौन सी परिस्थिति में सामना करना है? कौन सी परिस्थिति में सहन करना है, कौन सी परिस्थिति में सामना करना है? डिफिकल्ट सिचुएशंस में सहन करना है और सहज परिस्थितियों में सामना करना है। ऑप्शंस नहीं है तो सामना करना है, ऑप्शंस है तो सहन करना है। ऐसे हर परिस्थिति में तो ऑप्शंस तो होंगे ही ना। सहन करना है, संबंधों को काटना नहीं है, मतलब संबंधों से दूर नहीं होना है तो सहन करना है। जुड़े बनाए रखने के लिए, संबंधों को बनाए रखने के लिए सहन करना है, संबंधों को काटने के लिए सामना करें संबंधों को काटने के लिए सामना करें परिस्थितियों को सामना करना है और लोगों को सहन करना है। परिस्थितियों को सामना करना है और लोगों को सहन करना है। कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो लोगों के कारण से ही परिस्थिति क्यों ना क्रिएट हुआ हो, तो परिस्थिति को सामना करना है, लोगों को सहन करना है। जैसे कोई परिस्थिति प्राकृतिक आपदाओं के कारण से आए, बाढ़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो तो परिस्थिति, उसको सामना करना तो है ही, सामना तो करना ही पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे सहन करेंगे, उसको सामना करना पड़ेगा। उस परिस्थिति को में क्या करना है वो सोच करके उसको सामना करना है। सहन करना माना अगर कोई व्यक्ति के कारण से परिस्थिति क्रिएट हो रहा है, वो गलत व्यवहार कर रहा है तो इसलिए वो परिस्थिति क्रिएट हो रहा है, तो उन परिस्थितियों में परिस्थिति का सामना करना है लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रखना है। वो गलत व्यवहार कर रहा है उसके लिए दंड तो मिलना ही है। अगर रास्ते चलते कोई लड़का छेड़ रहा है उसको सहन करना है? नहीं करना, उसका तो सामना करना ही है। वो व्यक्ति बदल जाए ये भावना रखना है, ना कि व्यक्तिगत दुश्मन ऐसा देख लेंगे उसको क्या करेंगे। नहीं, क्राइम को कम करना है समाज में तो दया भावना तो रखना पड़ेगा। दया भावना रख करके ये नहीं है कि वो क्राइम ये करता जाए हम सहन करें। नहीं, वो जेल भी क्यों भिजवाया जाता है उन लोगों को जो अपराधी है? ताकि वो बदल जाए। शिक्षा कानून बना हुआ है ताकि वो बदल जाए। वो दया भावना है तो बदल जाए। ऐसा नहीं है कि इसने ऐसा किया तो देख लेंगे क्या करेंगे। नहीं, बदले की भावना नहीं। व्यक्तिगत जीवन में भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो सामना तो करना है, और गुणों को आधार बना करके सामना करेंगे तो वो सफलता हमें प्राप्त होगी। वो जो बहुत ही मशहूर एग्जाम्पल जो हमें स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली, सामना तो करना था भारतवासियों को, ब्रिटिशर्स को सहन नहीं करना था हमें। वो जो कर रहे हैं तो उसको सहन करते जाएंगे तो आजादी नहीं मिलती थी, उसको सामना करना था, सामना किया, लेकिन व्यक्तिगत एक ब्रिटिशर के खिलाफ नहीं, भाग आप हमारे देश छोड़ के जाओ, आप अपने देश में सुखी रहो, हम अपने देश में सुखी रहेंगे, ऐसा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन परिस्थिति को तो सामना करना ही था। ऐसे ही परिस्थिति को व्यक्तिगत जीवन में भी परिस्थिति को तो सामना करना है, उसके लिए कई बार हमें गुस्सा दिखाना भी पड़ेगा, कई बार हमें फर्म रहना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा, लेकिन अंदर से शुभ भावना है, किसी के प्रति बदले की भावना ना रखे, तब जाकर के हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। और लास्ट शक्ति है, आठवीं शक्ति है, सहयोग देने और लेने की शक्ति। समाज में रह रहे हैं, सहयोग तो चाहिए, हेल्प तो चाहिए, मदद तो चाहिए होता है, मदद मांगने से मिलेगा। हाँ, मांगने से दो चार बार मिल जाएगा, लेकिन जितना हम मदद करते जाएंगे उतना मदद मिलता जाएगा। लेकिन मदद जब भी हम करते हैं तो क्या सोच करके मदद करते हैं, ये व्यक्ति थोड़ा काम का है, कहीं ना कहीं भविष्य में वो काम आएगा, तो उसकी मदद कर लेनी चाहिए, तो सोच करके करेंगे, ये व्यक्ति काम का नहीं है तो उसका मदद करने से कोई फायदा नहीं है, नहीं करो, ऐसा करेंगे। प्रैक्टिकली कई बार ऐसा हो जाता है, भले हम सोच करके नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली कई बार ऐसा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसे? कहीं ना कहीं रिटर्न हमें चाहिए होता है, तो इसीलिए वो स्वार्थ रख करके हम करने की कोशिश करते हैं। चलो स्वार्थ रखा भी, ये व्यक्ति बड़ा काम का है, मदद कर लो, आउट ऑफ द वे भी जाकर के हमने मदद कर ली, ठीक है, बहुत कुछ सुनना पड़ा लोगों से, फिर भी हमने मदद कर ली, लेकिन दो चार सालों के बाद क्या होगा, जब मुझे मदद की जरूरत होगी तो क्या करेंगे हम उसी व्यक्ति के पास जाएंगे और कहेंगे कि मैंने मदद दी, चलो ऐसे नहीं मांगेंगे, मैंने मदद दी थी तो मदद दो फिर वापस, नहीं, एक अंदर से होता है कि मैंने अथॉरिटी समझते हैं कि मदद की थी ना, तो उसकी बारी है अभी मदद करने की, तो चलो जाकर के मांग लेते। लेकिन अगर उसे कुछ नहीं, मतलब मदद करने की सिचुएशन में नहीं है, तो बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो वो क्यों ऐसा होता है, ये भावना हम रखते हैं कि जिसको हमने मदद की थी उसी से हमें मदद चाहिए, तो ये भावना रखते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। तो रिटर्न के बिना हम कुछ करेंगे क्या? कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए कहते हैं लोग, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस रखे बिना मदद करो, हम कर पाएंगे? मनुष्य कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना कोई कर्म करता है? करते हैं, कर सकते हैं। चलो आप यहां आए, माउंट आबू क्यों आए? कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके आए? यहां जाने से कोई ज्ञान मिलेगा, आध्यात्मिकता के बारे में समझ मिलेगी, जिंदगी की कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस तो है। वो है, अगर वो कोई कहे कि माउंट आबू जाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ब्रह्म कुमारियों का ज्ञान तो बेकार है, नहीं जाओ, आते नहीं। कोई भी हम कर्म करते एक्सपेक्टेशन रख करके करते हैं, कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है यहां से, तो क्यों आते आप यहां? कुछ तो मिल रहा है तभी तो आए हैं, राइट? कोई भी कर्म करते हैं बिना एक्सपेक्टेशन के हम नहीं करते हैं, वो मनुष्य की टेंडेंसी है। तो अभी क्या करना है, मदद हम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रखे। क्या कर्मों की गुह्य गति क्या कहता है? जो आप दुनिया को दोगे वो लौट कर आपको मिलेगा, ये नहीं कहता जिस व्यक्ति को आपने मदद किया उसी व्यक्ति से मदद मिलेगा, वो कहता है ऐसे नहीं। जो आप दुनिया को दोगे वो लौट कर आपको मिलेगा, तो मैंने किसी की मदद की, उसी व्यक्ति से मुझे भले ना मिले, लेकिन मुझे जब आवश्यकता है तब कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, ये गारंटीड है, क्योंकि मैंने दिया हुआ है ना, मुझे तो मिलना ही है, चाहे वो अच्छा कर्म है चाहे बुरा कर्म है। बुरा भी अगर किसी व्यक्ति का मैंने बुरा किया है, उसी व्यक्ति से मुझे बुरा नहीं होगा, कहीं ना कहीं से मेरे जीवन में वो बुरा हो ही जाएगा, है ना। तो ये सोच करके अगर मदद करते हैं, मुझे रिटर्न मिलेगा ना, तो तसल्ली मिलेगी, मदद करो भाई, मदद करो, जिसको भी जरूरत है मदद करते जाओ, मुझे जब आवश्यकता है तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, है ना। थोड़ा सा बेहद की भावना रख करके हम मदद करते जाएंगे तो मदद मिलती जाएगी और बहुत बड़े बड़े कार्य बहुत सहज रीति से हम कर सकते हैं, सहयोग की शक्ति से, संगठन की शक्ति से, है ना। और इन अष्ट शक्तियों को जब हम अपने जीवन में धारण करते, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो हीरे तुल्य बन जाता है। तो ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये जो सेशन था, इसको अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आध्यात्मिकता को जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। इन अष्ट शक्तियों को कर्म में जब हम लाते हैं तो हम हीरे तुल्य बन जाते हैं। हीरा जब खान से निकलता है एक पत्थर की तरह, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, एक पत्थर की तरह होता है, नॉर्मल पत्थर, लेकिन उसी पत्थर को एंगल से काट करके, थोड़ा सा पॉलिश करके, थोड़ा सा तराशते हैं तो उसका जो शाइनिंग है, स्पार्कल है, तो वो बढ़ जाता है। और हीरे को कहा जाता है वो बहुत हार्ड स्टोन है, बहुत ही स्ट्रांग है, हीरे को काटने के लिए हीरा ही चाहिए, किसी और चीज से उसको काट नहीं सकते, बहुत हार्ड है। और दूसरा क्वालिटी है, बहुत सुंदर है, हीरा हार्ड भी है और सुंदर भी है। हम सभी आत्माएं क्या है, बहुत स्ट्रांग भी है और बहुत ब्यूटीफुल भी है, आत्माएं चमकते हुए सितारे, बहुत स्ट्रांग भी है, पावरफुल भी है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल भी है। लेकिन अभी उसकी चमक को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उसकी चमक को बढ़ाने के लिए ज्ञान से उसको तराशना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी चीजें है ना, उसको काट करके, उसको पॉलिश करके तराशना पड़ेगा। इसी के लिए तो आप सभी यहाँ आए हुए हैं, है ना। तो जितना आप मेडिटेशन करते जाएंगे, जितना ये ज्ञान की गहराई में जाते जाएंगे, आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो स्पार्कल है, चमक है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं।